जिस परमात्मा में देने की शक्ति है, क्या उसमें जानने की शक्ति नहीं होगी? हम इंतजार कर रहे हैं कि वह परमात्मा आएगा और हमारी जिंदगी बदलेगा, पर क्या पता वह परमात्मा हमारा इंतजार कर रहा हो, हमारे एक्शन लेने का, हमारे कर्म करने का। स्वागत है आपका कर्म प्रधान में, एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट जहां हमारा चर्चा का विषय है चेतना, एलियंस, भूत, साइकिक्स, परमात्मा, नास्तिकता और बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल टॉपिक्स। मैं हूं आपकी होस्ट कशिश गंभीर। स्पिरिचुअल कम्युनिटी में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या मेरी वेबसाइट kashishgambhir.com पर, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड के साथ।
आई बिलीव आई हैव मेट मैं बहुत सारे मतलब एक्टर्स डायरेक्टर्स से जिनसे भी मिली हूँ आज तक, तो मैंने यही चीज़ एक नोट करी है कि इंसान ने जितनी भी ज़्यादा तरक्की करी होती है, जितना भी ज़्यादा आगे पहुँचा होता है, उतना ही ज़्यादा वो हम्बल होता है, क्योंकि उसने उतने फेलियर्स देखे हैं लाइफ में, उसको पता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत लगी है, कितनी जान लगी है। और जो इंसान अभी या तो स्टार्ट कर रहा है ग्रो कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें उतनी ज़्यादा ह्यूमिलिटी हो, तो उनको लगता है अरे मैं तो पब्लिक फिगर बन गया
अगर एकदम से सक्सेस मिल जाए ना, तो आदमी को लगता है मैं पता नहीं कौन सी तोप हूँ। लिटरली अभी मुझे भी ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स हो गए एक्टिंग में। अगर होता है ना स्टार्टिंग में क्लिक मिल जाए, आप स्टार बन जाए, तो लगता है कि यार मैं ही कुछ ऐसा हूँ। तो ये जो जर्नी थी ना फॉर 7-8 ईयर्स, इसने बहुत कुछ सिखाया लाइफ में। एज मैं सिविल इंजीनियर हूँ, MBA इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अच्छी जॉब थी, स्टडीज में भी मैं आई वॉज गुड, तो हर जगह ना बड़ी अप्रिसिएशन मिली है, स्कूल, कॉलेजेस, एवरीवेयर। तो ये इंडस्ट्री ने मुझे इतनी रिजेक्शन सिखाई, जितनी अप्रिसिएशन पहले मिली थी उतनी रिजेक्शन से यहाँ मिली है। तो कई बार पता भी नहीं चलता कि आप में कमी क्या है। तो अल्टीमेटली हो सकता है लोग आपको कह रहे हैं यू आर बेस्ट फॉर दिस रोल, यू आर बेस्ट फॉर दिस थिंग, बट स्टिल आप वो नहीं कर पाते। तो यहाँ से पता लगता है कि यार वो आप में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, जब तक उसकी वर्थ नहीं पड़ती, जब तक बाय गॉड ग्रेस लगा लो, या जब तक आप पे वो कृपा नहीं होती ना, यू आर नथिंग। तो इसीलिए जो होता है ना हम्बलनेस तभी आती है, उन्हें पता कि भाई तुम अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते, दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स, पर है कि उन्हें वो चांस नहीं मिला, तो यू कांट से कि भाई मैं अपने दम पे सब कुछ कर लूंगा। मेहनत करना अपना फर्ज है, पर जो उसका फल मिलता है ना उसमें कह लो देयर इज अ सुपर पावर, दुआएं हैं लोगों की।
बिल्कुल, देखिए इंसान को कदर भी नहीं आती अगर जैसे कोई चीज बहुत जल्दी मिल जाती है ना, तो मोस्टली इंसान को कदर नहीं आती कि अरे ये तो मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने ये करा तो मेरी वजह से हो गया और आगे भी मैं करता रहूंगा। तो समटाइम्स क्या होता है कि इंसान गलत रास्ते पर भी चला जाता है या गलत एक्शंस भी कर देता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आई कि ये मालिक की कृपा है, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ एक्चुअल में।
मतलब पंजाबी ये बोलते हैं जदू मान हो जाए ना कि यार मैं आ जाए ना जब उसमें कि भाई मैंने कर दिया, तो समझो वहां से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कुछ टाइम तो हो सकता है कि आप ग्रो करते रहो, पर अल्टीमेटली देखो अपने दम पे कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको कईयों ने रास्ता दिखाया होता है, कईयों की दुआएं होती है, आशीर्वाद होता है, एक वो सुपर पावर है, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। तो कहते हैं ना वक्त, वो वक्त वही होता है कि जब वक्त खराब चल रहा था आप तो वही होते हो खराब वक्त में, फेलियर। जैसे ही वक्त बदलता है आप आज भी वही हो, मतलब वक्त बदलने पे भी, पर कुछ ना कुछ वो चेंजेस आते हैं, टाइम बदलता है या कह लो कि भगवान की कृपा होने लगती है आप पे। तो आप तो वही थे फेलियर में भी और सक्सेस में भी, तो फिर मान किस बात का करना। तो अल्टीमेटली यू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वैसे कोई बॉलीवुड में कोई काम करा अभी तक?
मैंने एक शेफ मूवी की थी, उसमें एक छोटा सा पार्ट था सैफ अली खान के साथ।
अच्छा,
हिंदी में फिल्म वही की है। फिर उसके बाद एक वेब सीरीज की थी मैंने पेशावर नाम से।
अच्छा,
टीवी सीरियल की है एक स्टार भारत पे अजूनी नाम से, और काफी टीवी कमर्शियल्स किए हैं।
तो आपको साउथ इंडस्ट्री में मतलब कोई प्रॉब्लम आई एज अ सिख, आपको कोई प्रॉब्लम आई उसमें? एज एन एक्टर सीख एक्टर
क्या प्रॉब्लम्स, वैसे तो कहते हैं ना कि पार्ट ऑफ लाइफ है, मैंने पहले भी कहा था देखो प्रॉब्लम्स तो अगर मैं सीखना भी होता ना तो भी होती, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपका रंग काला है तो भी प्रॉब्लम हो जाती, ओवर फेयर हो तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आप ओवर हैंडसम होते हो तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी लुक अच्छी नहीं होती, मतलब प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर। तो आप बींग अ सिख भी आनी थी क्योंकि इंडस्ट्री में स्टीरियोटिपिज्म है थोड़ा सा ना, जैसे बॉलीवुड में कि जो सरदार्स को जैसे मोस्टली 90% ऑफ द टाइम जो शो किया जाता है ना कैरिकेचर टाइप शो किया जाता है, तो अभी भी वो इश्यूज हैं। जैसे मैंने कई बार कुछ ऑडिशंस दिए हैं फ्रेंड ऑफ हीरो का फ्रेंड बनना है उसमें, तो मोस्टली मुझे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि फ्रेंड है ना वो भी स्टीरियोटाइप्ड होते हैं कि अगर सरदार होगा थोड़ा कॉमेडी टाइप का फ्रेंड होगा, उसकी लुक भी थोड़ी गोलू
कॉमेडी में ज्यादा डाल लेते हैं,
तो वो मेन कई चीजें आ जाती है, तो उन्हें लगता है कि वो स्मार्ट भी नहीं होना चाहिए कि हीरो को ओवरशैडो ना करे, तो कई चीजें आ जाती हैं, वो स्टीरियोटाइपिज्म है कि एक इमेज सेट कर रखी है सरदारों की, तो या अगर कोई बड़ा अच्छा रोल आ जाता है जिसमें आप फिट होते हैं तो उसमें जो बड़ा सेलिब्रिटी है उसे सरदार बना देते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपकी बात चल रही है आप फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग तक है तो एंड में लगा कि रोल बहुत बड़ा है तो किसी बड़े सेलिब्रिटी को अप्रोच कर देते हैं उसे सरदार बना देते हैं। द थिंग इज प्रॉब्लम है पर अपना काम है, प्रॉब्लम्स तो होंगी, लड़ते रहो,
आपने अपना कर्म करते जाना है, बाकी
कर्म करते रहो, अपने हाथ में वही है,
बिल्कुल
तो इसलिए ठीक है प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, उसके बाद प्रॉब्लम्स को क्रॉस करके ही कोई कुछ बनता, अगर इतना सिंपल होता तो
हर कोई
अचीव करना स्टार बनना ऐसा कुछ हर कोई बन रहा था, तो यू नीड टू फेस दैट प्रॉब्लम्स।
जो लोग पर्सिस्ट करते हैं ना, पेशेंस होता है, तो फिर वही वो वहां तक पहुंच पाते हैं, दैट इज व्हाट द फ्रेंच
सबर सबर बोलते हैं जैसे पंजाबी में, सबर इज हर चीज में ही चाहिए, ऐसा नहीं एक्टिंग में, कुछ भी काम आप हटके करना चाहते हैं ना एक लीक से या कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें आपको सबर होना चाहिए, प्रॉब्लम सहने की ताकत होनी चाहिए आप में, फेलियर सहने की ताकत होनी चाहिए, कुछ भी अलग करना, अगर सिंपल एक आम जिंदगी जीना चाहते हुए प्रॉब्लम्स उसमें भी होंगी पर उस लेवल की होंगी, ठीक है कुछ चीजें स्मूथ होंगी, अगर कुछ हटके करना है कुछ बड़ा करना है तो प्रॉब्लम।
वो एक सनी देओल की एक मूवी आई थी ना, वो जो मेरे को अभी नाम के गदर गदर जिसमें गाना है ऊर्जा काले,
हाँ गदर
है ना,
गदर,
तो उसमें वो उन्होंने शायद पगड़ी डाली हुई थी ना।
हाँ ऑलमोस्ट उन्होंने वैसे सिख कैरेक्टर ही प्ले किया उसमें दोनों में, गदर में भी और गदर टू में भी,
तो अदरवाइज ही डजंट वेयर पगड़ी, तो उसमें
वैसे वो है
वैसा
सिख
रोल
है
भी
पर
मिल सकता है आपको कोई।
हाँ नहीं वही है देखो रोल तो एक बार आप एक सक्सेसफुल लीग में आ जाते हैं ना फिर देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं फिर अपॉर्चुनिटीज बनाई जाती है, जब आपका नाम बन जाए ना तो फिर अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए बन के आती हैं खुद, व्हेन यू गेट फेमस यू आर डूइंग वेल तो राइटर्स भी आपके लिए लिखते हैं, देयर आर हंड्रेड ऑफ स्टोरीज, द थिंग इज आपको बस उस मुकाम पे पहुंचना है, जिस दिन वो मुकाम मिल गया तो काम भी मिल गया समझो।
एक ना आपकी एक लाइन लिखी थी एंड इट वाज डोंट लूज योर आइडेंटिटी टू फिट इन द नॉर्मल्स,
यस
सो व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस लाइन।
एक्चुअली मुझे रिसेंटली भी एक इंसिडेंस हुआ कि मुझे ना कुछ लोगों ने कहा कि यार तुझे तू सरदार ही रह चल ठीक है, तेरी मेरी प्रेफरेंस है कि एज अ सरदार ही काम करूंगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा ना अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे, मेरा यह है कि यार आई ऑलवेज रिप्रेजेंट माई सेल्फ कि एक सरदार एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले होते हैं, वी आर नॉट दैट कैरिकेचर, हम हमेशा वो जो दिखाते हैं ना बॉलीवुड में वो बल्ले बल्ले ये कॉमेडी ये सब करते रहते हैं,
अलग रोल्स भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी,
बीइंग आपने कंसीडर ही क्यों करना कि स्टीरियोटाइपिज्म ये सरदार है तो ऐसे ही करेगा, जस्ट कंसीडर अस नॉर्मल जो नॉर्मल एक्टर्स हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने आपको ना थोड़ा बदल, तू जैसे एक फिजिक है वो कहते यार पतला हो जा ये हो जा, अपनी लुक थोड़ी जो है उसे थोड़ा डाउन कर ले, ऐसे ऐसे मुझे सजेशन दिए कि अगर तुझे काम नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा यार देखो अपने आप को ना हमेशा इंसान प्रोग्रेस करता है कि अपने आप में ना इम्प्रूवमेंट करो, एक्टिंग इम्प्रूव करो, अब मैं अपनी एक्टिंग खराब करके कैरिकेचर टाइप एक्टिंग करूं या अपनी आइडेंटिटी छोड़ूं तो उससे बेटर है कि आई विल वेट, मैं जो हूं उसी को बेटर करूंगा रेदर देन खराब करने के, तो मैं अपनी वही मैंने मेरे माइंड में आया था कि आई सिर्फ एक काम करने के उसमें ना कि यार कुछ भी काम करना है तो अपनी आइडेंटिटी छोड़ दू, आई डोंट बिलीव इन दैट, यू बी योरसेल्फ, कीप डूइंग योर बेस्ट काम आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपके लिए आएगा और बेस्ट आएगा। तो आई जस्ट बिलीव इन बीइंग योरसेल्फ एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव। मतलब ये नहीं है कि बीइंग योरसेल्फ में कि आप वहीं पर रुक गए, मतलब यू बी योरसेल्फ बट स्टार्ट यू नो अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, प्रोग्रेस करते रहो। कहीं कहते हैं कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं इसे भी गलत मानता हूँ, आप ऐसे रहो पर उस ऐसे का बेस्ट वर्जन बनते रहो, कि एफर्ट करो हर दिन इम्प्रूव करो।
बेस्ट वर्जन ऑफ यू, राइट। तो एक और चीज आपने लिखी थी उसमें, लोग जज करते हैं आपका वक्त और औकात देख के, आगे कुछ था काम करते रहना, ऐसे करके कुछ था, लोग जज
यस
करते हैं आपका वक्त और औकात देख के।
नहीं, ये प्रैक्टिकलिटी है। ये तो एक वेरी यू नो वेरी गुड एग्जांपल है कि जब आप लाइफ में अच्छा कर रहे होते हो तो हर कोई, जैसे मैं सिमरजीत नागरा मेरा सरनेम है मान लो, अगर मैं लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ ना तो जो कोई और सरनेम वाला होगा ना, नागरा है, कोई सरदार होगा, यार मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, फिर हर कोई आपका भाई बन जाता है, आप हर एक के रिश्तेदार बन जाते हो, अरे यार वो मुझे भी जानता है, अरे वो भी नागरा है, या वो भी सिख है, या वट एवर, वो मेरे कॉलेज का है। तो हर कोई यू नो जब अच्छा वक्त चल रहा है, अगर आपका वक्त खराब है यार, तो फिर जो दोस्त होते हैं अपने होते हैं वो भी कहते हैं यार इसका टाइम खराब चल रहा है, हो सकता है कुछ हेल्प ही ना मांग ले, यू नो कुछ आ रहा है, और फोन करो ना आप किसी को, सबको पता कि आपका टाइम खराब है, किसी को फोन करो ना यार फोन आ रहा है, सकता उधार ही ना मांग ले या कुछ हेल्प ही ना मांग रहे। और अगर अच्छा वक्त है तो वो खुद दुनिया को दिखाते हैं कि भाई फोन कर रहा है मुझे सिमरजीत, देख ले भाई ये बंदा ऐसा है। तो वही है कि लोग ये, और ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आप का वक्त सही चल रहा है तो हर कोई यू नो आपको ट्रीट अच्छा ही ट्रीट करेगा, अगर वक्त खराब है तो ठीक है थोड़ा आपको साइड लाइन कर देते हैं लोग। सो वी मस्ट एक्सेप्ट दैट, इसमें कुछ दुनिया को या लोगों को गलत कहने की वो नहीं है, इट्स वेरी टिपिकल ह्यूमन नेचर।
एसोसिएट करने वाली बात तो बिल्कुल मानूंगी। एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो स्कूल में बेसिकली उस टाइम पे गौतम गंभीर फेमस हुए थे, तो
ओके
मेरा नाम कशिश गंभीर है। तो उन्होंने सब सब ने मैं आई वाज इन अ गर्ल स्कूल, तो सब लड़कियों ने बोला कि तुम गौतम गंभीर से रिलेटेड हो, एंड बाय चांस हमारे घर के पास में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ही इज़ माई कज़न, तो मैंने ऐसे कैजुअली बोल दिया हाँ ही इज़ माई कज़न, तो वो मान लिया उन्होंने। उसके बाद वो एक साल तक जोक चलाया हमने एक दो फ्रेंड्स को पता था, एक साल तक वो प्रैंक खेला सबके साथ, उसके बाद साल के बाद जाके बताया सब कुछ नहीं
नहीं वगैरह, तब आपको स्टार ट्रीटमेंट मिल रही होगी कि हाँ यार इम्पोर्टेंस मिलती है, और
ऐसे
फिर
जब
जब लगा कि
इट वाज अ
कुछ लेना
जोक
देना
यू नो
नहीं है उनसे तो फिर वो ट्रीटमेंट खत्म हो गई थी। तो वही है कि भी वो वक्त ऐसा था कि लग रहा था ना कि हाँ यार ये तो यू नो सेलिब्रिटी की सिस्टर है, तो वैसे होता, जब लगा कि यार नहीं कुछ लेना देना नहीं है तो ट्रीटमेंट बदल जाती है, तो
नहीं,
इट्स वेरी
इट मेक
ह्यूमन।
सेंस हाउ प्रियंका चोपड़ा के भी सारे कजन्स आ गए हैं बॉलीवुड
यस
में, कि प्रियंका चोपड़ा मेरी सिस्टर है
हाँ
कहते हुए। सो इट बिकम्स इजी फॉर पीपल, बट एनीवे। अच्छा, एक मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि एक चीज मैंने देखी है सिमर, कि जितने भी सिक्स हैं जो कि फेमस हैं, यू नो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत ज्यादा हेट्रेड हेट्रेड वाले कमेंट्स हैं, बहुत हेट्रेड देखी जा रही है बेसिकली खालिस्तान के कॉन्सेप्ट को लेकर। इसके बारे में आपका क्या कहना है, और प्रिंसिपल्स क्या हैं बेसिकली जो कि हमें सिखिज्म में सिखाए गए हैं, हमें क्या सिखिज्म क्या सिखाता है खालिस्तान के बारे में, या फिर हेट्रेड के बारे में, इंसानियत के बारे में?
ये ना जो ये जो ट्रेंड लगा लो, ये रिसेंटली शुरू हुआ है आई थिंक फ्रॉम 5-6 months प्रीवियसली। अभी क्या कोई भी पोस्ट होती है, मैं अभी रिसेंटली इंडिया जीत रही थी तो मैंने कोई रील डाल दी, तो उसमें लोग कर रहे हैं तू भी खुश हो रहा है, तू तो खालिस्तानी है, तू तो ये है। अगर मतलब खुश हो रहे हैं तो भी खालिस्तानी, अगर मैं कुछ हल्का सा क्रिटिसाइज कर दूं तो भी कहते हैं कि तू तो बुरा बोलेगा ही, तो यू नो लोगों का काम है बोलना। और रिसेंटली मुझे लगता है कि ना पॉलिटिकली एजेंडा शुरू हो गया मोस्टली, आम लोग आप पंजाब में भी आओगे ना तो 99% लोग दे आर वेरी हैप्पी विद दी यू नो आर कंट्री, आर पंजाब, आर इंडिया। तो डिफॉल्टर्स हर जगह मिलते हैं, ऐसे नहीं है कुछ सिख भी डिफॉल्टर होंगे, कुछ 1-2% कोई हर रिलीजन में मिलेंगे, या कुछ नो डाउट सिख्स के साथ मिस
यहाँ
ट्रीटमेंट।
पर मैं एक बात पे इंटरप्ट करना चाहूंगी कि मैंने अभी बाय चांस एक वेबसाइट देखी थी जहां पे सारे क्रिमिनल्स की लिस्ट थी, हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट। तो उसमें यही चीज मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि उसमें सभी मजहबों से सारे डिफॉल्टर्स थे, क्रिमिनल्स थे, देवर हिंदूस, देवर मुस्लिम्स, देवर सिख्स, देवर क्रिश्चियंस. सो जो इंसान है उसने क्राइम करा है क्योंकि उसकी इंटेंशंस वैसी थी. अगर एक इंसान क्राइम करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही रिलीजन के लोग क्राइम करता है. वैसा तो नहीं है कि हिंदुइज्म में या क्रिश्चियनिटी में कोई क्रिमिनल्स नहीं रहे हैं, तो उसमें भी रहे हैं. तो क्या हम सारे हिंदूज को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं उसके लिए?
राइट, नहीं, वेरी ट्रू. यू नो, अगर कोई ना अच्छा रिलीजन को फॉलो करता हो ना, किसी को भी, और रिलीजन को समझता होगा, तो पहली बात वो क्राइम करेगा ही नहीं. जिसे रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी समझ आ गई ना, कोई भी रिलीजन होगा, देखो,
राइट,
हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, मतलब जिसे वो चाहे ना, वो बोलने में बड़ा कट्टर हूँ भाई किसी भी रिलीजन को लेके, और वो हेटरेट स्प्रेड कर रहा है, दूसरे रिलीजन को बुरा बोल रहा है, तो फिर उसे अपना धर्म ही समझ नहीं आया किसी भी धर्म का. तो पहले तो क्या धर्म का प्रचार कर रहा है, पहले अपना धर्म समझ ले. क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी धर्म ऐसा है जो हेट्रेड सिखा रहा है दूसरे धर्म के प्रति. क्योंकि सिखिज्म भी है, सबका प्रिंसिपल यही है कि सिखिज्म का भी, बाकी रिलीजन का भी, कि भाई अपना सबसे पहले तो सर्वदा भला, मीन विश फॉर गुड, एवरी वंस गुड. तो सबसे पहले तो वही है कि यार, जब आप किसी का बुरा सोच रहे हो तो फिर कहाँ का कोई धर्म फॉलो कर रहे हो. तो अभी ये रिसेंटली एजेंडा भी जो होता है ना, लोग ये भी भूल जाते हैं सिक्स को, जो कह रहे हैं खालिस्तानी इंडिया छोड़ो, आप फ्रॉम दी यू नो, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस चले जाओ, वर्ल्ड वॉर चले जाओ, तो ऑलवेज सिक्स कंट्रीब्यूटेड, यू नो,
यस,
सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया. और किसके लिए किया है? अपने भारत इंडिया के लिए किया है, किसी और पर्टिकुलरली कंट्री के लिए तो नहीं कर रहे है ना. और आज भी रिसेंटली भी न्यूज मिल जाएगी आपको, हर दो चार महीने में कोई सिक्स शहीद हो गया इंडिया के लिए, यू नो, इंडिया के फ्लैग लिपट के आ रहा है उसपे, तो किसके लिए हो रहे हैं वो? तो हम उसे छोड़ के ना, एक डिफॉल्टर केस आएगा ना, तो लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं. तभी कहते हैं ना, लोग आपकी 100 क्वालिटीज नहीं देखेंगे, वो देखेंगे 100 पॉजिटिव लोग होंगे ना, उन्हें भूल के एक जो, और हमेशा नेगेटिविटी है ना वो हाईलाइट भी ज्यादा होती है. लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कहते हैं ना, किसी की बर्बादी, किसी की, यू नो, किसी धर्म की या किसी, उसमें कोई बुराई होगी ना, अच्छाई पे फोकस नहीं करेंगे. बुराई मिल जाएगी, किसी भी धर्म की मिल जाएगी ना, तो उसको एंजॉय करते हैं वो. तो यही चीज है कि अगर कमी मिल जाएगी, उस कमी को पकड़ के ऐसी मार्केटिंग करेंगे, फिर गलत, यू नो, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, नेगेटिव पीपल इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसका हुआ बन जाता है. तो अच्छी चीजें सब हो जाते हैं. तो रिसेंटली यही चल रहा है, लेकिन लोगों को तोड़ने के लिए कोई ना कोई पॉइंट चाहिए, तो वो, और इंडिया में सबसे बड़ा पॉइंट है रिलीजन. रिलीजन उठाओ, किसी को भी कहीं भी फूड डलवाओ, बर्बाद करो, कुछ करो, आपस में पीस खत्म करो, तो वही रिलीजन स्ट्रेंथ भी है और वही वीकनेस भी है. अब कैसे यूज हो रहा है, तो ऑल डिपेंड्स.
मैं ये मानती हूँ कि, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं ये मानती हूँ कि जो सही मायने में हिंदू है, जिसने सच में टीचिंग्स पढ़ी है, श्री कृष्ण की या भगवद गीता पढ़ी है, तो हमें यही टीचिंग मिली है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है. तो सब जगह है, सब में है, पूरे हिंदुइज्म की टीचिंग ही यही है. तो अब ये तो नहीं कि सिर्फ हिंदुओं में ही है या सिर्फ सिखों में ही है, तो सब जगह है. तो कभी कोई जो रियल हिंदू होगा, जो सही मायने में मानता होगा टीचिंग्स को, वो इस टीचिंग को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो किसी को हर्ट नहीं करेगा. तो जो लोग हर्ट कर रहे हैं, प्रॉब्ली दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन पॉलिटिकल एजेंडास. 2024 वोट्स आने वाले हैं, रिलीजन को यूज करना है,
वोट्स हैं, देयर लॉट ऑफ इश्यूज, यू नो, चल रहे हैं. हर पार्टी जाती है कुछ ना कुछ करके. अगर एक पार्टी जीत जाएगी तो दूसरी पीस खराब करना चाहेगी, दूसरी जीत जाएगी तो कोई और पार्टी पीस खराब करना चाहेगी. तो उन्हें लगता है कि रिलीजन सबसे आसान टॉपिक है, जिसे देख के ना लोग भड़क जाते हैं, तो उसे यूज करते हैं. पर जिसे रियलिटी में रिलीजन के बारे में पता होगा, आपने जैसे हिंदू कहा ना, अब कोई भी रिलीजन उठा लो, सिख उठा लो, मुस्लिम उठा लो, क्रिश्चियनिटी उठा लो, हर एक यही कहता है कि यू नो, देयर इज अ ऑलमाइटी, और सबके लिए सेम ही है. ऐसा तो है नहीं कि हिंदूज के लिए एक अलग भगवान हो गया. जब वो, आपने अगर मूल मंत्र है ना सिखिज्म में, एक ओंकार सतनाम करता
पूरा ओंकार सतनाम,
तो उसमें यही बताते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निरंकार है, ना तो वो इंसानी रूप में है, जैसे सुपर पावर जो इस दुनिया को चला रही है, तो वो सबके लिए कॉमन ही होगी. वो रिलीजन देख के तो आ नहीं रही कि भाई ये हिंदू है, ये सिख है, तो उसका कोई रूप नहीं है, वो हर जगह है. अब मुझे मान लो कोई पत्थर, एग्जाम्पल ले लो, पत्थर ही है, मुझे उसमें कनेक्शन फील हो रहा है. कहीं कहते हैं ना कि चलो यार, मैं, तुम मूर्ति पूजन मत करो या जो भी, मुझे लग रहा है कि क्योंकि ऑलमाइटी हर जगह है, हर चीज उनकी बनाई है ना, अकाल पुरख की, तो मुझे वहां कनेक्शन फील हो रहा है, तो आप उसे पूछ लो, या किसी कहोगे एक पत्ता है, मुझे तो उस पत्ते में भी भगवान दिख रहा है, तो मैं तो उसे पूछूंगा। ठीक है, किसी को लगता है कि यार कुछ भी नहीं है ये चीज ना, भगवान तो एक एनर्जी है, तो एनर्जी को पूछ लो, या यू नो इट्स यू नो कनेक्शन की बात है, आप किस चीज से कनेक्ट करते हो ना, उसी में ऑलमाइटी भी, ऑलमाइटी हर जगह ही है, तो आप कहाँ कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो आप एक अच्छे इंसान, अच्छी यू नो एक अच्छी वाइब्स आपको कैसे मिल रही है, स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट करें, उसे फील कर लो। तो अल्टीमेटली ये रिलीजन जो है, धर्म तो इंसान ने बनाया हुआ है, अच्छे के लिए बनाए थे, पर अभी उसका मिसयूज भी हो रहा है।
पर्पस वो फुलफिल नहीं हो रहा। मैं एक यहाँ पे बड़े एक लॉजिकल चीज रखना चाहूंगी हमारे लिसनर्स के लिए कि देखो, जो लोग ये बोलते हैं कि मान लो सिर्फ मंदिर होना चाहिए, ठीक है, और सिर्फ हिंदुइज्म के थ्रू ही परमात्मा मिलेगा, बाकी सब कुछ छोड़ो, सबको बाहर निकालो। तो मेरा सवाल ये है कि अगर परमात्मा सिर्फ मंदिर में है तो कौन से मंदिर में है? जो मंदिर इंडिया में है, या जो मंदिर अमेरिका में है, या जो मंदिर कनाडा में है? नाउ द लॉजिक इज कि आप जो हिंदू अमेरिका और कनाडा में हैं वो वहां के मंदिरों में भी जा रहे हैं और परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप मानते हो कि परमात्मा आपकी आवाज यूएसए से भी सुन रहा है, कनाडा से भी सुन रहा है और इंडिया से भी सुन रहा है। बेसिकली सिखिज्म, हिंदुइज्म और सारे रिलीजन्स की यही टीचिंग थी कि परमात्मा निराकार है। हिंदुइज्म ने भी यही सिखाया है। तो क्योंकि वो निराकार है, इसलिए तो आप उसको जो अमेरिका का टेम्पल है वहां पर भी पूज पा रहे हो ना। अगर वो निराकार ना होता, अगर उसको चार दीवारी में बंद कर लेते, तो पहली बात वो परमात्मा है ही कैसे, अगर वो चार दीवारी में बंद हो सकता है तो। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सिमरजीत, व्हाट इज खालिस्तान फॉर यू?
पहले मैं फर्स्ट टॉपिक हुए उस पर ही कंटिन्यू करता हूँ जो आपने कहा था, फिर देन वी मूव टू दिस। जो मेरा कंसेप्ट है ना, उसमें आपने जैसे कहा कि मंदिर में, किस मंदिर में भगवान है या किस गुरुद्वारे में है, देखो तो मेरे में एक पर्सनल चीज है, वैसे मैं डिस्क्लोज नहीं करता। मेरा ये मानना, देखो मैं जब भी किसी मंदिर से क्रॉस करता हूँ, किसी गुरुद्वारे से क्रॉस करता हूँ, या मस्जिद लगा लो, जहां भी लगता है ना कि मुझे फील होता है कि भगवान से लोग कहते हैं कनेक्टेड है, तो आई ऑलवेज बो डाउन, एंड आई बो डाउन किसी धर्म या किसी गुरु या किसी भगवान को नहीं करता। आई बो डाउन टू दैट ऑलमाइटी, कि
ऑलमाइटी।
वो गुरुद्वारे और वो बस मेरे लिए मंदिर मस्जिद, वो एक यू नो मुझे एक याद दिला रहे हैं बस, कि
याद
अरे
दिला
याद
रहे
कर
हैं,
ले। तो
राइट।
मैं इससे उसमें नहीं, जो भी दिखता है ना, मैं हो सकता है एक ऑलमाइटी जिसे मैं मानता हूँ ना, गुरुद्वारा निकले तब भी मैं उन्हीं को करूंगा, मंदिर होगा, बस वो मुझे एक याद दिलाते हैं कि हाँ भाई तूने याद करना उन्हें। और जो जैसे बोलते हैं, एक तो बोलते हैं ना भगवान निरंकार है, हर जगह होता है, तो जो गुरुद्वारे और मंदिर का जो मैं प्रिंसिपल मानता हूँ ना, जो मेन प्रिंसिपल है, वो मुझे लगता है कि अगर आपने ठीक है आपने पढ़ाई करनी है, आप घर पे भी कर सकते हो, पर आप स्कूल क्यों जाते हो, क्योंकि वहां एक डिसिप्लिन है, आपको एक वो माहौल मिलता है कि अच्छे से पढ़ाई कर सको। ऐसे मेरा मानना है गुरुद्वारा मस्जिद मंदिर इसलिए बने हैं कि आपको वहां एक डिसिप्लिन मिल सके, एक वाइब्स मिल
यस,
सके, एक माहौल मिल सके। भगवान तो आपके घर में भी है, अगर आप वो माहौल घर पे भी बना सकते हो ना, तो घर ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है। अगर
बिल्कुल
वो माहौल आप सड़क पे बना सकते हो, तो आपके लिए वही है। तो मुझे लगता है गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद हम इसलिए जाते हैं कि एक डिसिप्लिन, एक माहौल, सबकी इंटेंशन वहां मतलब एक ऑलमाइटी को याद करने की होती है, एक प्योरिटी होती है, एक
बिल्कुल।
डिसिप्लिन होता है। तो मुझे तो ये पर्पज लगता है, ठीक
अरे
है,
मंदिर को
गुरुद्वारा
अगर आप
मंदिर
संधि
मस्जिद।
विच्छेद करोगे ना,
हाँ जी,
मंदिर का अर्थ है मन के अंदर,
सही,
वो जो हमारे मन के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है।
मैं वही कह रहा हूँ, अगर
मेरा
आप
भी यही है।
वही बेडरूम कहीं पे भी बैठ के ना, अगर आप वो कंसंट्रेशन, वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो ना, अपने मन में ही जाना आपने, तो जहां आप बैठ के कर सकते हो वही मंदिर है, वही गुरुद्वारा है। तो अल्टीमेटली बस ये भी प्रॉपर लोग ना समझ नहीं पाते, जो प्रिंसिपल मंदिर और गुरुद्वारे सब बनाने का है ना बेसिकली, तो उसके पीछे भी लड़ाइयां हो जाती हैं, उसको भी यू नो मिस यूज किया जा रहा है। तो
अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे कि आपके लिए खालिस्तान
देखो,
क्या है?
जो खालिस्तान, वैसे अगर डेप्थ में जाए ना, तो ये बना है खालसा वर्ड से, प्योरिटी, तो खालिस्तान इज यू नो अ लैंड ऑफ प्योरिटी, यू कैन कॉल इट।
यस,
तो
राइट।
अब उसे डिवाइड करके लोगों ने ना एक पर्टिकुलर लैंड जो लैंड ऑफ प्योरिटी को एक पर्टिकुलर रीजन से
रीजन क्रिएट कर दिया।
रीजनलाइज कर दिया है। तो मेरा मानना है कि खालिस्तान का मतलब है कि लैंड ऑफ प्योरिटी, तो व्हाई नॉट मेक दिस होल वर्ल्ड प्योर, आप उसे टुकड़ों में क्या वो कर रहे हो। तो कहते हैं ना, बस ये भी एक पॉलिटिकली वो बन गई है कि हमें अगर मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन दे दोगे तो क्या वहां पीस होगा। आर यू श्योर कि मान लो हिंदूज को एक पर्टिकुलर पोर्शन मिल जाए, मुस्लिम्स को मिल जाए, तो वहां 100% पीस या दुनिया
आपस में
बिल्कुल।
लड़ लेंगे।
अब वही कह रहा हूँ, लड़ते हैं जो अगर हिंदू हिंदू है ना, वो भी उनमें भी पता नहीं कितनी कैटेगरीज है, वो भी लड़ते रहेंगे। सिख में भी इतनी कैटेगरीज है,
कास्ट को
जो कास्ट
लेकर
उसमें लड़ते
लड़ाइयां
रहेंगे।
कर
तो
लेंगे।
जिसने लड़ना है ना, तो उन्होंने लड़ते रहना है। तो ये बिना मतलब की चीजें हैं कि भाई हमें हमारा एरिया दे दो, बस लाइफ इज सक्सेसफुल। तो लेट्स मेक द होल वर्ल्ड द लैंड ऑफ प्योरिटी खालिस्तान। क्यों मतलब इस चीजों में लड़ रहे हैं, अगर लड़ भी रहे हैं और कह रहे हैं हमें प्योरिटी और खालसा भी चाहिए, तो आई थिंक हमें पीस चाहिए, हर बंदे इंसान को पीस चाहिए। तो अपना कंट्री है, उससे बड़ा पीस और क्या मिलेगा। हाँ ठीक है, कुछ नेगेटिविटी हो जाते हैं हर जगह ना, मतलब वो एक कहते हैं ना भेदभाव, कहीं 1% तो होता है, जब मैंने आपको कहा था शुरू में डिफॉल्टर्स होते हैं, पर वो कुछ परसेंट को लेके ना हम एक दूसरे के लिए नफरत नहीं पैदा कर सकते या अपने देश से नफरत पैदा नहीं कर सकते। अब मैं सीरियसली बोलूं, अगर साउथ इंडियंस यहाँ आ जाए ना दिल्ली पंजाब में, तो कहीं ना कहीं हम मिस्ट्रीट इनडायरेक्टली कोई मजाक उड़ा देता है, या आपने देखा होगा कि फॉरनर्स कहीं बार ऐसे आ जाते हैं। तो ये हर जगह ऐसा नहीं है कि सिख के साथ हो रहा है, हर किसी के साथ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ फ्यू परसेंट, वेरी फ्यू परसेंट जो ये चीज नहीं समझते, तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक को हम ठीक नहीं कर सकते, तो वो 99% को देखो जो अच्छे लोग भी हैं, जो इतने हिंदू हैं जो गुरुद्वारे जाते हैं, अभी ऐसे कुछ सिख भी हैं जो मैं जैसे अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने गणपति जी रखे थे, मुंबई में था मैं, तो मैं वहां गया। अल्टीमेट पर्पज तो देखो पीस है, भाईचारा है, एक दूसरे से मिलना है, तो धर्म भी यही सिखाता है, तो धर्म को उस वे में यूज करो, हेटरेड के लिए क्यों यूज करना है।
बिल्कुल बिल्कुल। गुरु तेग बहादुर जी ने और उनकी फैमिली ने अपनी जान दे दी थी उस टाइम पर हिंदूज को और हिंदुज्म को बचाने के लिए मुस्लिम रूलर्स से।
वेरी ट्रू,
और ये एक चीज़ है जो आपको रियलाइज करनी चाहिए कि हमें हिंदूज को रियलाइज करनी चाहिए कि अगर एक गुरु ने, एक सिख गुरु ने हिंदूज को बचाने के लिए बेसिकली, अगर वो उस टाइम ऐसा सैक्रिफाइस नहीं करते तो आज पूरा हमारा जो देश है दैट दैट वुड हैव बीन अ मुस्लिम कंट्री। पर उन्होंने सिर्फ अपना सैक्रिफाइस करा, उनकी पूरी फैमिली ने, उनके बच्चों ने सैक्रिफाइस करा हम हिंदूज के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गुरु नानक जी का जो लंगर है, वो उन्होंने अपने प्रैक्टिस से, लंगर की शुरुआत से ही एक नींव बनाई थी कि लंगर में कोई भी मजहब का इंसान आ सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, बुद्धिस्ट हो, तो कोई भी आकर लंगर चख सकता है। तो अगर उन्होंने हमें एक सेपरेट स्टेट बना बनाकर देनी होती, कोई खालिस्तान मान लो, कोई फिजिकल प्लेस बनाकर देनी होती, तो वो
वेरी
तभी
ट्रू,
कर देते। पर उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा कि एवरीबडी इज वेलकम इन द कोर्ट ऑफ लॉर्ड। इनफैक्ट हमारे छोटे छोटे चीजों में गुरुओं की बहुत गहरी बातें छिपी हैं। आपको पता है गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में,
वेरी
उसके चार चारों तरफ दरवाजे क्यों बनाए गए हैं? उसके पीछे कारण है। उसके चारों चारों तरफ दरवाजे इसलिए बनाए गए हैं, वो सिंबॉलिक है हमें ये बताने के लिए कि एनीबॉडी, कोई भी इंसान, किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का, कहीं से भी, किसी भी दरवाजे से आकर परमात्मा तक पहुंच सकता है। वो एक सिंबॉलिक चीज बनाई है हमारे लिए। तो जो खालिस्तान जो वर्ड था, बेसिकली अगर आप इसको अगेन तोड़ो, खालिस्तान खाली वर्ड से बनाइए, इसका रियल मीनिंग था कि जब इंसान अपने आप को खाली कर देता है पांच द्वेषों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब आप उससे खाली हो जाते हो और आप प्योर हो जाते हो, एक पवित्र सोल हो जाते हो, इट मींस यू हैव लैंडेड इन खालिस्तान, जिसको आप
बिल्कुल
दूसरे वर्ड्स में सचखंड भी बोलते हैं। फाइव लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो फिफ्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है दैट इज सचखंड और खालिस्तान, ये कॉन्शियसनेस का लेवल है, कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, ये वो कॉन्शियसनेस का लेवल है।
यही लोग ना मिसअंडरस्टैंड करके ना, यू नो अगर इसे किसी किसी भी चीज को अगर डेप्थ में समझेंगे ना, तो यू नो चाहे रिलीजन हो चाहे वर्ड्स हो, खालिस्तान है जैसे, जिस चीज को अगर हम डेप्थ में समझने लग जाएंगे तो इश्यू नहीं आएगी। जब हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना किसी चीज के, ऊपर ऊपर का ज्ञान लेते हैं, यू नो हाफ नॉलेज इज डेंजरस, तो वो नुकसान करती है। तो बाकी जैसे आपने कहा कि यू नो हमारे जैसे गुरुओं ने शहीदियां दी, उनके बच्चों ने शहीदियां दी, तो 90% हिंदू समझते हैं वो, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जो चार साहिबजादे हमारे जो दसम गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो साहिबजादे,
चार साहिबजादे मूवी में बहुत अच्छा दिखाया, मुझे लगता है कि सबको वो मूवी देखनी चाहिए, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में।
हाँ जी, तो वही है कि देखो सब समझते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा जो हिंदू लीडर्स हैं हमारे, यू नो योगी जी और मोदी जी हैं, इन्होंने बीच में ये भी कहा था जो चिल्ड्रन डे है ना वो चार साहिबजादों के नाम पे मनाना चाहिए, यहाँ मनाया जाता है वो 60-70 साल के बुजुर्ग के नाम पे, तो वो लॉजिकल नहीं बनता। तो जो पॉइंट है इसका मतलब वो रिगार्ड समझ रहे हैं, मतलब उनका रिगार्ड समझ रहे हैं, तभी वो चाहते हैं ना कि ये दिन जो है उनके नाम पे मनाया जाए चिल्ड्रन डे, बिकॉज इन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े सेक्रीफाइस किए, जब बच्चे को समझ भी नहीं होती ना तब उन्होंने धर्म और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। नहीं तो आजकल तो एक बच्चा होता है ना एक चॉकलेट से पिघल जाता है, यार ये दो कुछ भी करवा लो, तो उस उम्र में उन्होंने ना उस उम्र में उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, देखो शहीदियां दी। तो इसीलिए यू नो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने कहा था कि हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स वो सिख सिख जो बच्चे हैं उनके नाम पे चाहते थे कि चिल्ड्रन डे मनाया जाए। तो मैं ये हाईलाइट भी करना चाहूंगा कि किसी भी यू नो इट्स चिल्ड्रंस डे तो वो बच्चों के उस पर ही होना चाहिए, तो अगर ऐसा होगा तो यू नो इट विल बी एक वेरी
इट विल बी अ प्राइड फॉर अ कंट्री।
प्राइड यार, तो और भी बड़ी बात होगी एक हिंदू लीडर्स या हर रिलीजन उसे एक्सेप्ट कर रहा है, यू नो एक सिख का सैक्रिफाइस हर रिलीजन एक्सेप्ट कर रहा है ना, अगर सब एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसका मतलब है इट्स अ पॉइंट ऑफ पीस एंड पॉइंट ऑफ यूनिटी।
अच्छा सिमर जी, चलो टॉपिक चेंज करते हैं, अब मुझे आप कोई भी एनी इंसिडेंट बताओ अपनी लाइफ का, या फिर चाहे आपके एक्टिंग के टाइम पर आया कोई भी फेवरेट इंसिडेंट बताओ अपनी लाइफ का।
अभी गया 7-8 साल में ना ऐसा हो गया, फेवरेट कम याद रहते हैं, जो स्ट्रगल्स या जो फेस किए ना चीजें वो ज्यादा याद रहती हैं, तो फेवरेट ढूंढना पड़ता है। इंसान वही कहते हैं ना खुशी का मोमेंट तो एकदम भूल जाता है, जो जो स्ट्रगल्स और जो दुख मिले होते हैं ना वो ज्यादा याद रखते हैं। तो फेवरेट तो मुझे है कि देखो लिटरली फेवरेट है बताऊं, मैं नया ना एक्टिंग में लैंड हुआ था, तो 5-6 महीने हुए थे मुंबई आए हुए, तो मैं फ्लाइट से वापिस आ रहा था मुंबई से घर चंडीगढ़, तो आई वाज स्लीपिंग इन दी फ्लाइट, अपनी सीट पर सोया हुआ था मैं, तो ना दो एयर होस्टेस आती है मेरे पास, तो वो मुझे नॉक करती है एज शोल्डर, कहते कि सर 2 मिनट आप पीछे आओगे। तो मैं पहले तो सरप्राइज हो गया, एक तो नींद में था, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया यार, वो मुझे पीछे लेके जा रही है। ठीक है मैं पीछे गया, तो वहां उन्होंने बोला कि सर हम आपके साथ सेल्फी खिंचवा सकते हैं, तो मैंने सेल्फी खिंचवाई। फिर मुझे डाउट में ना मतलब डाउट में मैं खुद हो गया, मैंने कहा यार ऐसा भी मैं सेलिब्रिटी बना तो इन्होंने क्या लगा मुझे नहीं पता, मे बी किसी से रिजेंबल किया या मेरी पर्सनैलिटी से लगा, वट एवर,
अभी तो मैं आया हूँ।
हाँ तो फिर थोड़ा यू नो खुशी तो हुई, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, अरे यार मतलब इट्स फाइन, तो बड़ी खुशी हुई। पर ये अंदर ये डर भी था कि जैसे 15-20 मिनट तो फिर लोग भी ऐसे देख रहे थे यार कौन है कौन है, तो मैंने कहा ये राज खुल ना जाएगी भाई, अभी कुछ है नहीं है तो बेइज्जती हो जाए, तो मुझे ये था कि जल्दी से अभी ये मोमेंट तो होगी, अब जल्दी से फ्लाइट लैंड हो और मैं यहाँ से भागू इससे पहले कि राज खुलेगी भाई अभी मैं कुछ नहीं हूँ। पर आगे ये फीलिंग आएगी यार चलो यू हैव समथिंग, भगवान ने कुछ ऐसा तो दिया है कि उन्हें लग रहा है कि यार तू कुछ है, तो कॉन्फिडेंस आएगी, यस इतनी कृपा है भगवान की, जस्ट कीप यू नो कीप डूइंग योर बेस्ट। सो
आपको एक मोटिवेशन मिल गया था इनिशियली?
या नहीं नहीं वो लगा था कि मतलब तेरे में कुछ है बेटा, तू बस मेहनत कर, भगवान का नाम ले, जस्ट यू नो कीप गोइंग, तो इट वाज यू नो वेरी, किसी को भी अच्छा लगता है कोई ऐसी ऐसा इंसिडेंस हो जाए ना, और एक जब आप यू नो एक स्टार्ट में स्टार बन गए, अब सेलिब्रिटी बन गए, फिर तो ये कॉमन चीजें होती हैं, जब आपको लगता है अभी आप अपना नाम बना रहे हो, आप फेमस नहीं हो, स्टिल बाय योर पर्सनैलिटी या बाय योर ऑरा किसी को ऐसा लगा है, तो फिर यू नो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ यार चलो भगवान ने कुछ ऐसा दिया है, यू आर ऑन द राइट पाथ।
आपको उन्होंने एयर होस्टेस ने कहाँ पे देखा था उस टाइम पे?
कहीं नहीं देखा, मैं अपनी सीट पे बैठा,
अच्छा उन्होंने पहले
क्रॉस तो
कहीं पे
करती
आपको
हूँ
देखा
रैंडम
नहीं होगा,
फ्लाइट,
मतलब वो सेल्फी क्यों
नहीं कुछ
खिंचवाना
नहीं देखा,
चाहते
मैंने
हैं?
उनसे पूछा भी नहीं, मैंने कहा पूछ के अपनी बेइज्जती हो जाएगी गल को, यार हम तो ये समझ रहे थे आपको, आप तो कुछ हो ही नहीं, फोटो डिलीट करो डिलीट करो, तो मैंने कुछ नहीं पूछा। वैसे भी उस टाइम ना सब कुछ ब्लैंक था, उन्होंने कहा सर मैं थोड़ा वैसे भी शाये हूँ, यू नो लड़कियां वड़कियां जब होता है थोड़ा सा ऐसा रियल लाइफ में, तो वो 2-3 थी, तो उन्होंने कहा सर फोटो सेल्फी वेल्फी, मैंने कहा ठीक है फाइन, अब मैं क्यों कहूँ कि क्यों खींच रहे हो, मैं कुछ लिटरली आई हैवन्ट सेड इवन अ सिंगल वर्ड, मैं गया फाइन फाइन, तो पीछे जैसे बैक साइड में खाली स्पेस होता वहां गए सेल्फी ली, आई सेड थैंक यू, आई रन बैक टू माई सीट, मैंने कहा अब जल्दी से फ्लाइट लैंड हो जाए, मोमेंट स्पॉइल नहीं होनी चाहिए, भागो उससे पहले कि कुछ पता लगे, तो ये अभी भी राज है, उन्होंने क्या समझ के सेल्फी ली थी, क्योंकि तब मैंने एक्टिंग में ऐसा कुछ काम किया भी नहीं था कि वो मुझे पहचान ले, नया नया मुंबई गया था।
मैं एक बात समझना चाह रही हूँ, वैसे आपने MBA इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करा था ना, तो वहां से इधर शिफ्ट कैसे हुआ?
नो, पहले तो मैंने जैसे सिविल इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग को ना पेरेंट्स कहते हैं यार तो कुछ भी कर, अपने पैशन जो मर्जी फॉलो करे, बेसिक क्वालिफिकेशन मस्ट है लाइफ में, क्योंकि मान लो दैट प्लान लॉन्ग टर्म में काम नहीं किया, या ओवरऑल वैसे भी यू नो अपनी स्टडी पूरी करना जरूरी है फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑल्सो, तो इंजीनियरिंग में नॉन मेडिकल स्टूडेंट था, आई वॉज यू नो बहुत ब्रिलियंट तो नहीं था बट गुड एट स्टडीज था, तो इंजीनियरिंग कर ली, फिर उसके बाद पहले तब फोकस सिर्फ यही था कि यार करियर में यू नो इस इंजीनियरिंग में या कुछ जॉब वाइज अच्छी जॉब करनी है, यू हैव टू बी अ गुड बिजनेसमैन, पहले फोकस यही था, तो फिर MBA भी जरूरी थी यू नो कंप्लीट दी क्वालिफिकेशन, जब मैं MBA में गया ना एक्टिंग वाला क्रेज वहां पे आया, उससे
अच्छा,
पहले मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं था इतना,
ओ
पता भी नहीं था इतना, क्योंकि ना फैमिली या फ्रेंड सर्कल इसमें कोई ऐसा नहीं
तो
है,
वहां पे एकदम से
वहां
कैसे आ गया?
यू नो MBA में ना जो को रेगुलर एक्टिविटीज होती है ना, तो फर्स्ट टाइम मैंने उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो वहां ना बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, मैं जैसे जाती एक मिस्टर फ्रेशर होता है वो बन गया, कुछ प्ले वगैरह किए।